हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 14। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्तं अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ता। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्केन या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न परा वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांबर धरुण बिंब फल पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवयेस्तवे वेदे साङ्गपक्रमोपनिषदे गायन्ति यम् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगी। సుఖినో యస్యాంతం న విదో సురాసురగణా దేవాయ తస్మే నమః. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జాయామోదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీయుత్తమ శ్లోకే భక్తిరభవతి నైష్టికీ. పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత కథాధార శ్రీవాసది గౌర భక్తవృంద. హరి కృష్ణ 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 హరే హరే, హరి రామ 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 హరే హరే. గ్రంథ శ్రీమద్భాగవతం మహాపురాణ కీ జై. ప్రథమ స్కంద అధ్యాయ 18 జిస్కా శీర్షక్ హై బ్రాహ్మణ బాలక్ ద్వారా మహారాజ్ పరీక్షిత్ కో శాప్. శ్లోక సంఖ్య 14. ఇన్ అత్యంత హి పవిత్ర శబ్దోం కో మేరే సాథ్ సాథ్ శరణ్ కర్నే కా ప్రయాస్ కీజియే. ఋషిగణ్ సూత్ గోస్వామీ కో కహ రహే హై, కో నామ తృప్యేత్ రసవేత్ కథాయాం మహత్తమైకాంత పరాయణస్య నాంతం గుణానామ గుణస్య జగ్ము యోగేశ్వరాయ భవ పద్మ ముఖ్యా. కో నామ తృప్యేత్ రసవేత్ కథాయాం మహత్తమైకాంత పరాయణస్య నాంతం గుణానామ గుణస్య జగ్ము యోగేశ్వరాయ భవ పద్మ ముఖ్యా. కో నామ తృప్యేత్ రసవేత్ కథాయాం మహత్తమైకాంత పరాయణస్య నాంతం గుణానామ గుణస్య జగ్ము యోగేశ్వరాయ భవ పద్మ ముఖ్యా. శబ్దార్థ, కో నామ తృప్యేత్ రసవేత్ కథాయాం. కో మన కోన్ హై వా. నామ విశేష రూప సే తృప్యేత్, జో పూరా సంతోష్ ప్రాప్త కర్ లే. రసవిత్, అమృత్ రస్ కా ఆస్వాదన్ కర్నే మే పటు. కథాయాం, కథాఓ మే. మహత్తం యని జీవో మే సబ్సే మహాన్, ఏకాంత ఏకమాత్ర, పరాయణస్య అలా అర్థాత్ ఆశ్రయ కా, న అంత న మన కభీ నహీ అంత మన అంత హై, గుణానామ యని గుణో కా, అను అగుణస్య అగుణస్య మతలబ్ బ్రహ్మ కా, జగ్ము నిశ్చిత్ కర్ సకే, యోగేశ్వరాయ భవ పద్మ ముఖ్య, యోగేశ్వర యని యోగ శక్తి కే స్వామి భగవాన్, యే జో భవ యని శివజీ, పద్మ యని బ్రహ్మజీ, ముఖ్య యని ప్రముఖ హై. అనువాద్, భగవాన్ శ్రీకృష్ణ యని గోవింద్ సమస్త మహాన్ జీవో కే ఏకమాత్ర ఆశ్రయ హై, ఔర్ ఉన్కే దివ్య గుణో కీ మాప్ శివ తథా బ్రహ్మా జైసే యోగీశ్వరో ద్వారా భీ నహీ కీ జా సక్తి. తో భలా जो रस आस्वादन में पट्टू हैं, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह से तृप्त हो सकते हैं? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि शिव जी तथा ब्रह्मा जी दो प्रमुख देवता हैं, वे योग शक्ति से परिपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ शिव जी ने उस समय विष का सागर पी लिया जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मारने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने शिव समेत अनेक देवताओं की सृष्टि की, अतएव ये दोनों ईश्वर हैं, किंतु वे परम शक्तिशाली नहीं हैं। परम शक्तिशाली तो गोविंद या कृष्ण हैं, वे ब्रह्मा हैं और उनके दिव्य गुणों की माप शिव, वे ब्रह्म हैं और उनके दिव्य गुणों की माप शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वर द्वारा भी नहीं की जा सकती। अतएव भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय हैं। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबों से महानतम हैं। तो फिर महानतम जीव भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है? इसलिए कि वे समस्त भोग के आगार हैं। हर व्यक्ति हर वस्तु का आस्वादन चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। भगवान असीम हैं और उनके नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद, नाना रूपता आदि अनंत हैं, और जो उनका आस्वादन करना चाहता है वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्त नहीं होते। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण में होती है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दाचिरात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। योगीजन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी मामलों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन आध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे थे और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। चूंकि भगवान ब्रह्मा हैं और उनके गुण दिव्य हैं, अतः ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। अत्यंत ही सुंदर श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंध के 18वें अध्याय, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप, इस अध्याय का आज हम श्लोक नंबर 14 पढ़ रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 13 में भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका सानिध्य कितना महान है, कितना महत्वपूर्ण है, कि उस सानिध्य की तुलना तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। उनके साथ शुद्ध भक्तों के साथ एक क्षण की भी यदि सानिध्य प्राप्त हो जाए तो उसकी तुलना न स्वर्ग से की जाती है और न ही भौतिक मुक्ति से। भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिष, कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनका जो संग होता है तो हम जैसे पतित जीवों के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो तो स्वर्ग और मुक्ति से भी बढ़कर है। तो भौतिक किम उदाशिता, तो ये भौतिक वस्तुओं के साथ उनकी क्या तुलना की जा सकती है, यानी हर एक वस्तु से अधिक जो है वो भगवान के भक्तों का संग है। और आज इस श्लोक में ऋषिगण जो है वो भगवान की महिमा और भगवान की कथाओं की महिमा, क्योंकि महत सेवा जो ये भगवत संगी है उसके साथ रहकर क्या करना है, क्यों भगवान के भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण है। महत संगत सुदुर्लभ, तो इस सुदुर्लभ संगत को प्राप्त करने का क्या अभिप्राय है, क्योंकि हमने कल पढ़ा कि भक्त संग को एक क्षण देत भक्ति उपजाय, कि अगर एक क्षण के लिए भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए तो हमारे हृदय के अंदर जो भगवान की भक्ति सुप्त है तो भक्तों के संग से वो जागृत हो जाएगी। तो ऐसा क्या है, भक्त हमें ऐसा क्या प्रदान करते हैं जो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जो जन्म जन्मांतर से विलुप हो गया है, विलुप्त हो गया है, दिखाई नहीं देता, वो छलछला कर बाहर निकलने लगता है, ऐसा क्या भक्त जन हमें प्रदान करते हैं और भगवान की कथाओं में ऐसा क्या है, उसके विषय में आज बता रहे हैं। वे कहते हैं को नाम तृप्येत रसवेत कथाया, को नाम तृप्येत, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई तृप्त हो जाए, किसे, रसवित कथायां, ये भगवान के कथाओं के अमृत, भगवान की कथाओं में जो रस है वो रस ऐसा नहीं है जैसे भौतिक जगत में कोई भी रस आप खाते हो जो आपको पसंद लगता है, जो भी स्वाद वो आप जैसे जैसे खाते हो उसका रूल है। इस भौतिक जगत में आपको यदि रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगता है तो आप एक रसगुल्ला खाओगे, आह मजा आया, फिर दूसरा और भी मजा, फिर तीसरा, फिर थोड़ा कम, फिर जैसे जैसे आप खाते जाओगे ना वैसे वैसे उसका टेस्ट जो है वो आपके लिए भोज बनता जाएगा। अगर आपको एक आपको भले सबसे ज्यादा जो है ना वो रसगुल्ला पसंद है, लेकिन एक दिन में आपको बोला जाए कि 50 रसगुल्ले खा के दिखाओ, आपके लिए संभव नहीं होगा, आपको वोमिटिंग हो जाएगा, आप उससे घृणा करने लगोगे और कहोगे बस अब मेरे सामने रसगुल्ले मत लेके आना, क्योंकि ये भौतिक जगत में जो भी आनंद है वो टेम्पररी है। और जितना भी है, भले आपको कितना भी किसी से यदि हम प्रेम करते हैं तो जब तक वो हमें प्राप्त नहीं होता है तब तक ही वो प्रेम जो है वो इंक्रीज होता है, फिर जब वो प्राप्त हो जाता है तो वो प्रेम जो है वो डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। ये भौतिक जगत का नियम है, असुखम अनित्यम, नित्य नहीं है ये, कंटिन्यू नहीं है। और जिसमें हम सोचते हैं कि इसमें हमें आनंद आएगा उसमें भी आनंद आता नहीं है, क्योंकि आनंद इन वस्तुओं में रखा ही नहीं है। ये वस्तुएं तो केवल छलावा है, केवल प्रतिबिंब है उस आध्यात्मिक आनंद का। आज हम देखते हैं कि संसार में भी बहुत सारी कथाएं ऐसी होती हैं या स्टोरीज होती हैं या लोगों की बातें होती हैं जो हमें आनंद प्रदान करती हैं, लेकिन सुनते सुनते फिर ऐसा लगता है अब इस टॉपिक को बंद करो, नहीं पसंद लग रहा है, अभी कुछ और बोलो, क्योंकि उसका आनंद क्षणिक है, समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर भगवान की कथाओं के रस आस्वादन के विषय में बात की जा रही है, तो वो जो रस है भगवान की कथाओं का जो रस है, आनंद है, वो प्रतिक्षण वर्धमान है। एक कथा जो आपने पहले भी श्रवण की है, जब आप उसको किसी शुद्ध वैष्णव से दोबारा सुनते हो तो आपके मन में, अगर आप ये यहाँ पर देखो एक बात बताई गई है कि रसवित, रसवित यानी कि को नाम तृप्येत रसवित कथायां, रसवित का मतलब होता है जो रस का आस्वादन करने में पटु है, जो एक्सपर्ट है, जो जानते हैं कि भगवान की कथाओं के रस का जो आस्वादन कर रहे हैं और जिन्होंने पहले किया है, जो एक्सपर्ट हो गए हैं उस रस को टेस्ट करने में, तो वो को नाम तृप्येत, वो कभी भी तृप्त नहीं होते। उनको ऐसा लगता है और सुनना है और सुनना है, क्योंकि भगवान की कथा जो है वो कैसे है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर एक क्षण में जैसे जैसे आप सुनोगे, ये बिल्कुल भौतिक जगत की कथाओं से एकदम अपोजिट, जैसे जैसे आप सुनते जाओगे वैसे वैसे आनंद आता है, और सुनना है और सुनना है और सुनना है। जीवन कथा बन जाता है जो रसवित है उनका। हमको ऐसा लगता है कि अगर कथा न मिलेगी तो जीना संभव नहीं होगा। जैसे महाराजा परीक्षित, जब महाराजा परीक्षित वहां पर गंगा तट पे सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से कथा सुन रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी उन्हें बोलते हैं कि महाराज अभी आप बहुत थक गए हैं, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, कुछ फल खा लीजिए। तब परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, अब तो कथा के बगैर एक क्षण जीना भी संभव नहीं है, वो समय जो मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति यानी अगर खाने और सोने में बिताऊंगा तो वो समय जो है वो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ा दंड दिया जा रहा है मुझे, जब मुझे कथा से वंचित किया जा रहा है। तो कृपया मुझे, सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कृपया मुझे कथा के लिए एक क्षण क्षण के लिए भी मुझे कथा से वंचित ना कीजिए। क्योंकि जो पट्टु होते हैं यहाँ पर यही बता रहे नैमिषारण्य के ऋषि, को नाम तृप्य रसवित कथायाम, आखिर ऐसा कौन होगा जो भगवान के इतने महान कथाओं को श्रवण करने से तृप्त हो जाएगा। तृप्ति नहीं होती, भगवान की कथाओं का आस्वादन क्षण प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। और जो रसवित है, जो उस रस का आनंद लेने में एक्सपर्ट है, वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से भगवान असीम है, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के पार्षद, नाना रूपता आदि सब अनंत हैं, और जो इनका आस्वादन करना चाहते हैं वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी नाना को नाम तृप्ते, कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। यही बात को गोपियां गोपी गीत के श्लोक नंबर 9 में बताती हैं। वे कहती हैं, तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविप्रेरितम् कर्मशापम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि क्रीणन्ति ये भूरिदाचना। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों से छुप गए थे राज के समय, जब वो उन्हें दिख नहीं रहे थे, तब गोपियां कहती हैं भगवान से कि हमारा जीवन केवल आपके साथ बात करना, आपको देखना, उसी पर निर्भर है, इसके अलावा हमारे जीने का कोई सहारा नहीं है, आप हमसे क्यों छुप गए हो। तब कृष्ण मानो उनसे पूछते हैं कि तुम तो कहती थी कि मेरा सानिध्य, मुझसे बात करना, मेरे साथ बैठना, मेरे साथ रहना, वही तुम्हारा जीवन है, तो आज जिंदा कैसे हो। मैं तो तुम्हें छोड़कर चला गया, आज तो तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो तुम्हारे सामने नहीं हूँ, फिर तुम जीवित कैसे हो बताओ। तब गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम्, भले ही आप हमसे दूर हो गए हो, अभी हमारी नजरों के सामने नहीं हो, परंतु तुम्हारी कथा जो है वो अमृत के समान है। जब हम तुम्हारी कथा कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारी बातों को याद कर रहे हैं, तुम्हारे विषय में तुमने हमारे साथ जो लीलाएं की हैं, तो गोपियां उन्हीं लीलाओं को दोहरा रही हैं। सब गोपियां अपने अपने कृष्ण के साथ अपने उन बातों को एक दूसरे को बता रही हैं। एक गोपी कहती है, पता है सखी, मुझे उसने कहा था कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे करता हूँ, तुम तो मेरा जीवन हो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। तो दूसरी गोपी कहती है, उसने मुझे कहा था कि देखो, सुबह जब मैं जाता हूँ गैया चराने के लिए तो तुम द्वार पर खड़ी रहा करो, क्योंकि सुबह जब मैं तुम्हें देखता नहीं तो मेरा पूरा दिन अच्छा नहीं जाता। तो दूसरी गोपी, हर कोई गोपी अपने अपने अनुभव को बता रही थी, और इस तरह से वे कह रही हैं, तव कथामृतम, ये जो तुम्हारी कथा है वो अमृत के समान है। तुम्हारे बारे में जब बात करते हैं तो क्या होता है, कल्मषापहम, जितना भी कल्मष है, दुख है, वो समाप्त हो जाता है। तप्त जीवनम, इस संसार में सब कोई तप्त है, हर कोई दुखी है और सोचता है किसी से किसी के विषय में बात करके मैं अपने दुख को दूर कर दूंगा, है ना। वो सोचता है कि मेरा मन हल्का हो जाएगा जब मैं अपने दुख को किसी को बताऊंगा। हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि दुखों का निवारण इसमें है कि मैं किसी से कुछ बोलूं, किसी से बात करूं। लेकिन वास्तव में वो अमृत, वो औषधि जो है, वो भगवान की कथाओं के अतिरिक्त और किसमें भी नहीं है। जब उस टाइम पर जब आपके मन में दुख हो रहा है तो हम ये सोचते हैं किसी को कुछ बता के मुझे दुख संतुष्ट होगा, लेकिन वास्तव में बता के नहीं, सुन के दुख संतुष्ट होता है। जब हम सुनते हैं ना, इसलिए गोपीजन कहती हैं तव कथा अमृतम, तुम्हारी कथा अमृत के समान है। जब हम उसके विषय में सुन रही हैं, तुम्हारी कथाओं के विषय में, तो फिर क्या होता है, तप्त जीवन, हमारा जो हृदय अभी तप्त हो रहा है, हृदय जल रहा है तुम्हारे वियोग की आग में, वो सारी अग्नि जो है वो शांत हो जाती है। और यहाँ पर गोपियों ने भगवान की कथाओं को अमृत से बताया, अमृत के सदृश, यानी ये जो भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं, जो श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं, इनको कान से भी सुनने की चीज नहीं है, अमृत के विषय में। अभी देखो, अमृत है, आपको उसका टेस्ट कब आएगा, उसके विषय में मैं आपको पूरा बताऊं कि इसमें भाई क्या क्या चीजें डाली गई हैं, ये क्या है, कहाँ से आया, ये सब बताऊं। आपको उसका टेस्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपको उसको पियोगे नहीं। तो ये भगवान की कथाएं भी अमृत की तरह है, इसे सुनना नहीं है, इसे पीना है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के थर्ड श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं, पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावक। आपको रसिक बनना पड़ेगा। और यहाँ पर भी यही बताया कि रसवित, आपको रसवित बनना पड़ेगा, कि उन कथाओं को पीने के लिए एक्सपर्ट होना पड़ेगा। भले ही इन कानों के द्वारा पीना होता है कथा को, लेकिन सुनना नहीं होता है, पीना होता है, आनंदित होना होता है, एक एक शब्द को सुनकर आनंदित होते हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि को नाम तृप्त रसवित कथाएं, वो कौन है जो इनकी कथाओं से, अमृतमय कथाओं से जो तृप्त हो जाए। कैसा ऐसा कोई ऐसा एक्सपर्ट कथा श्रवण करने वाला हो तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से देखो, नैमिषारण्य के ऋषि बोलते हैं कि आप हमें सुनाते रहिए, हम इन कथाओं से श्रवण करने से कभी भी तृप्त नहीं हो रहे, बल्कि साधु साधु पदे पदे जितना जितना सुन रहे उतना उतना हमें सुनने की इच्छा और बढ़ रही है। और श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जैसे जैसे हम इनके कृष्ण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं तो क्या होता है, हृदयंतस्थो या भद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र है, जो कलमश है, विदनोति सुहृत साम, वो साफ हो रहे हैं, पवित्र हो रहा है हृदय, और कृष्ण का प्रेम जो है उसमें उत्कंठा उत्पन्न हो रही है, कृष्ण का प्रेम जो है वो जागृत हो रहा है जैसे जैसे सुन रहे हैं। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर ऋषिगण कहते हैं, को नाम तृप्त रसवित कथायाम महत्तम एकांत परायणस्य, महत्तम यानी जो बहुत महान, जीवों में सबसे महान है, एकांत परायण, उनका एकांत आश्रय है, जो महान जीव है उनका एक आश्रय है भगवान की कथा, उनको और किसी भी काम में आनंद नहीं आता है। जो महान जीव है, जो वास्तव में भगवान के भक्त है ना, उनको भगवान की कथा श्रवण करने के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता, वो कुछ भी सांसारिक टॉपिक्स पर बात करना नहीं चाहते, ना ही कुछ श्रवण करना चाहते, वो केवल भगवान की कथाओं को, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में अपने सारे शिष्यों को कहते हैं मुझे भागवत श्रवण कराओ, मैं भागवत श्रवण करना चाहता हूँ। यहाँ से हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज के जीवन का अंतिम समय था, 7 दिन बाकी रह गए थे, हजारों ऋषि मुनि सारे जो यहाँ पर संत एकत्रित हुए थे वो सब अपना अपना मत बता रहे थे। कोई बोल रहा था आपको यज्ञ करना चाहिए, कोई बोल रहा था दान देना चाहिए, कोई बोल रहा था आपको ध्यान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर सुखदेव गोस्वामी ने बताया नहीं, आपको केवल भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। जैसे जैसे हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय के अंदर जो ये भक्ति जो है वो तभी स्थित होकर बैठ जाती है हृदय के अंदर। अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भले हमें सब ये हम दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। श्रवण करना छोड़ दो आपकी सारी भक्ति छूट जाएगी, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के खाली श्रवण करना, श्रवण का दामन पकड़ के रखो, आपको कभी भी भक्ति से दूर नहीं होगे, आप सारे नियम आप फॉलो करना शुरू कर दोगे। ये गारंटीड है कि किसी शुद्ध भक्त के द्वारा हम श्रवण कर लेना बस वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी जो आप भक्ति कर रहे हो ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भक्ति है, क्योंकि इस जैसे जैसे हम श्रवण करते जाएंगे तो श्रवण करेंगे तो हमें श्रवण करने को मिलेगा कि हमें नाम जप करना, तो नाम जप में रुचि हो, उसके साथ साथ हमें कृष्ण प्रेम में रुचि होगी, कृष्ण की सेवा में रुचि होगी। तो जैसे जैसे श्रवण करते जाएंगे तो आगे स्टेप बढ़ता जाएगा, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सख्यम आत्मनिवेदनम, खुद ब खुद आगे जाते जाएंगे। हम लोगों को सिर्फ श्रवण को कस के पकड़ना है और जैसे जैसे श्रवण करते जाएंगे उसको फॉलो करना है कीर्तन के द्वारा। तो यहाँ पर बता रहे महत्तम एकांत परायण, जो महान जीव है उनका एकमात्र आश्रय क्या है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना। नान्तम गुणानाम गुणस्य जपो, नान्तम यानी कि भगवान के गुण का कोई अंत नहीं है, कोई माप नहीं है, जो भगवान है भगवान के गुणों की जो माप है, गुणों की गणना जो है वो कोई नहीं कर सकता। योगीश्वराय भव पद्म मुखिया, यानी भव यानी शिव जी, पद्म मुखिया यानी जो ब्रह्मा जी है वो सबसे प्रमुख है, वो भी भगवान के गुणों की महानता को सही तरह से बता नहीं सकते। ब्रह्मा और शिव कोई साधारण जीव नहीं है, ब्रह्मा किसी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो तो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, है ना। ऐसे ब्रह्मा जी जिनको स्वयंभू कहा जाता है वो भी भगवान के गुणों की महिमा को कंप्लीट नहीं बता सकते हैं। जो शिव जी हैं, अब शिव जी जो हैं वो जीव तत्व नहीं है, वो ईश तत्व मतलब वो शिव तत्व है, वो एक अलग से हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान की महिमा को पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते। वो भी भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, वो भी भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की कथा है, उनका भी जीवन है। तो फिर एक साधारण व्यक्ति जो है वो भला जो रस आस्वादन करना चाहता है वो भला कैसे इन कथाओं से तृप्त हो सकता है। असल में क्या है कि कोई व्यक्ति कितना महान है, कोई वस्तु कितनी महान है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कितने महान महान व्यक्ति उसकी महानता का बखान करते हैं। समझ में आ रहा बात कि कोई व्यक्ति कितना महान है उसका अंदाजा कैसे लगाया जाता है कि कितने महान महान व्यक्ति उनकी महानता का बखान करते हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद हम देखते हैं, जब हम बहुत ही वर्ध जो बहुत ज्यादा शुद्ध वैष्णव हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं अपने शास्त्र अध्ययन में, अपनी साधना में, जैसे हम लोग मायापुर जाते हैं कभी देखते हैं बड़े बड़े जो शुद्ध भक्त हैं, बहुत ज्यादा सीनियर डिवोटी हैं, जैसे राधानाथ स्वामी, लोकनाथ स्वामी, जो पंकज अंगेरी प्रभु, जननिवास प्रभु, राधा गोविंद महाराज और जय पताका स्वामी, इतने महान महान वैष्णव जो सिद्धांत को समझते हैं, जो कि बहुत भक्ति में आगे चढ़े हैं,
वो भी श्री प्रभुपाद जी की महिमा का बखान करते हैं, तो हमें और भी हमारे हृदय में श्री प्रभुपाद जी के प्रति आदर और भी इंक्रीज होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कितने महान महान व्यक्तियों ने उन्हें स्वीकार किया है, उनकी शरण ग्रहण की है, और हमें खुद पर एक तरह से प्राउड होने लगता है कि हमने कितना अच्छा एक गुरु चुना है जो कि महान गुरुओं के भी गुरु हैं, है ना। तो हमें उससे बहुत ज्यादा आनंद आता है। उसी तरह जो भगवान श्री कृष्ण है उनके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि योगेश्वराय भव पात्म मुख्या, कि उस भगवान की शरण तो शिव और ब्रह्मा भी लेते हैं। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि शिव और ब्रह्मा वो उसी गोविंद की शरण, जैसे बहुत सारी शास्त्रों में कथाएं हैं, अनंत अनंत कथाएं भगवान की, जब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया एक कि शिव जी ने उस विष का सागर पी लिया जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मारने के लिए पर्याप्त है ना। शिव जी ने, अभी देखो यहाँ पर समुद्र मंथन जब हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है विष्णु स्वरूप में वहां पर प्रत्यक्ष रूप में विराजमान थे। जब मंदराचल पर्वत टिक नहीं रहा था समुद्र के अंदर, तो भगवान कौर्म के रूप में बॉटम में नीचे बैठ गए थे और उसके ऊपर टिकाया था मंदराचल को। उसके बावजूद भी वो हिल रहा था, तो उस मंदराचल के टॉप पर वो अजित भगवान के स्वरूप में आकर उनकी सहायता कर रहे थे। देवताओं में सतोगुण के रूप में और जो राक्षस थे उनके अंदर रजोगुण के स्वरूप में, और जो वासुकी सर्प वहां पर था उसके अंदर तमोगुण के स्वरूप में वो विराजमान हो गए। हर तरह से भगवान ने उनकी सहायता की, लेकिन जब विष निकला, समुद्र से जब विष निकला, उस टाइम पर महादेव की तरफ भेज दिया सबको कि जाइए ये महादेव के पास ले जाइए। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि जब खुद विष्णु भगवान वहां पर उपस्थित हैं तो फिर उनको महादेव के पास भेजने की क्या जरूरत थी, वो विष्णु भगवान ही कुछ इसका ठिकाने लगा लेते ना इसको विष को। लेकिन इसलिए भगवान ने उस टाइम पर सहायता नहीं की, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव जी की महानता का बखान कर, शिव जी कितने महान हैं, वैष्णवों में अग्रगण्य, वैष्णवानाम यथा शंभू, जिस तरह से नदियों में निम्नगानाम यथा गंगा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, और देवानाम अच्युते, जो देव हैं देवता सारे उनमें भगवान अच्युत भगवान जो है वो श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में जो सबसे अग्रगण्य हैं वो शिव जी हैं। शिव जी पर दुखे दुखी, वो इतने त्यागी, यहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं शिव जी के त्याग के विषय में बताना चाह रहे हैं कि दूसरों को दुखी देखकर वो अपने जीवन की भी परवाह नहीं करते कि मैं हलाहल को यदि ग्रहण करूंगा तो मुझे भी तो इससे हानि होगी ना बाबा, मैं क्यों ग्रहण करूं, मुझे तो वैसे भी समुद्र से कुछ चाहिए नहीं। लेकिन दूसरों का कल्याण करने के लिए वो जहर तक पी जाते हैं। इतने महान शिव जी भी जब परेशान होते हैं, जब कभी इनके भी भक्त जो है ना वो निराले हैं, ये स्वयं भी निराले, ये आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं भक्तों को कि हमेशा इनको परेशानी का फेस करना पड़ता है। जब जैसे जब भस्मासुर को उन्होंने ये वरदान दिया कि किसी भी के व्यक्ति के सर के ऊपर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तो उसने देखा पार्वती को, मन आकर्षित हो गया और बोला अभी इसका दिया हुआ वरदान इसी पर आजमा लेता हूं, हो गया सक्सेस तो पार्वती मिल जाएगी, और हाय महादेव के ऊपर हाथ रखने के लिए उस टाइम पर भगवान श्री विष्णु ने उनकी सहायता की और उन्हें बताया कि तुम इसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, ये तो देखो इसका हाल देखो, जब से दक्ष प्रजापति ने इसको श्राप दिया है तब से तो ये सारा अपना तेज भी खो गया, अभी इसका वरदान भी सफल नहीं होता है, और तुम अगर इसके ऊपर हाथ रखने से फिर अपने ऊपर हाथ तो रख के देखो इसका वरदान सही है या गलत है। और भगवान की बातों में कौन नहीं आ जाता, और वो बेचारा भस्मासुर भगवान की बातों में आकर अपने ऊपर हाथ रख दिया, भस्म हो गया, वो तो अच्छा हुआ शिव जी को बचाने के लिए वहां पर भगवान आ गए। लेकिन भक्त सोचो अभी शिव जी का वरदान तो निष्फल होने वाला नहीं था, वो नहीं आते तो क्या होता, है ना। लेकिन भगवान जो है वो भगवान अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में अकेला नहीं छोड़ते। भगवान के भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ने कह दिया नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। तो शिव जैसे महान देवता भी भगवान की शरण के आश्रय हैं। और ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है वो तो ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब सारे बछड़ों और गायों को लेकर आए तो भगवान की इतनी स्तुति करते हैं, 50 श्लोकों में भगवान की बहुत सारी स्तुति करने के टाइम पर वे कहते हैं कि मेरा आप तो सूर्य के समान हो और मैं एक छोटा सा जुगनू, जैसे रात जुगनू तो सिर्फ रात को दिखता है, सुबह होती है तो उसका अस्तित्व नहीं दिखता, और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है आपके सामने। मैं कितना मूर्ख हो गया था जो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया। तो शिव जी भगवान के आश्रित हैं, ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान के आश्रित हैं। जब वो हिरण्यकश्यप को वरदान दे देते हैं तो फिर वो भगवान की सहायता कि मैंने तो वरदान दे दिया प्रभु, वो मेरी भक्ति कर रहा था और मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, अब आप ही संवारे। और उन्हें पता था कि भगवान विष्णु अवश्य सहायता करेंगे। तो ऐसे बड़े बड़े देवी देवता, इतने महान महान जो योगेश्वर द्वारा भी भगवान की स्तुति, भगवान के गुणों का पूरी तरह से बखान नहीं हो पाता है, और इसलिए वो भी सदैव भगवान के गुणों का बखान करते रहते हैं और श्रवण करने के लिए इच्छुक रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि देखो तीन प्रकार के प्राणी होते हैं, एक मुमुक्षु यानी जो मुक्ति के इच्छुक होते हैं, एक बुभुक्षु यानी जो भौतिक वस्तुओं के इच्छुक होते हैं, और एक मुक्त आत्मा होते हैं। ये तीनों हो चाहे अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परः। अकाम भले उसके मन में कोई भी इच्छा न हो, मुक्त आत्मा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी यदि पटु है, यदि एक्सपर्ट है, रसवित है, तो फिर भगवान की कथाओं को श्रवण करने में ही उसको आनंद। मुक्त आत्मा जैसे गोपियां, वो भी भगवान की कथाओं को श्रवण करके आनंदित होती है। और अकाम सर्व कामों वा, सर्व कामों मतलब संसार की हर एक वस्तु को देखकर दिल करता है काश मेरे पास होनी चाहिए, उसको भी इन भौतिक वस्तुओं में कभी आनंद नहीं आएगा। आनंद तो भगवान ने अपनी कथाओं में रखा है, इसलिए अकाम सर्व कामों, चाहे मुक्त आत्मा हो, चाहे बुभुक्षु हो भौतिक वस्तुओं की, या फिर मोक्ष काम या फिर मुक्ति के कामना रखने वाले मुमुक्षु हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परः। उनको क्या चाहिए? तीव्रेण भक्ति, अपनी भक्ति को तीव्र करने के लिए भगवान की भगवान का भजन करना चाहिए, और भजन स्टार्ट होता है श्रवण करने से। इसलिए हर एक व्यक्ति को अगर आनंदित होना है तो उसके आनंद का एक ही तरीका है कि उसे भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। एक चातक पक्षी की तरह हमेशा हमें ईगरनेस होनी चाहिए, हृदय के अंदर एक लालसा होनी चाहिए, मतलब हमारी आत्मा है ना वो तड़प रही है संतुष्ट होने के लिए, और उसकी संतुष्टि सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथाओं में। इसीलिए तो गोपियां कहती हैं कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण करने से ही मंगल होता है। जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं ना तो हमारा जीवन मंगलमय होता है और हर सुख प्राप्त होने लगता है। फिर भौतिक वस्तुओं में सुख दिखता नहीं है, श्रीमदाततम। और भूवि गृणन्ति ये भूरिदा जना, जो बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त हैं वो हमें यही सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं भगवान की कथाओं का। इसीलिए महत संगत सुदुर्लभम, जिसे हमने कल पढ़ा कि भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है, क्योंकि भक्तों के संग के द्वारा हमें भगवान की कथाएं प्राप्त होती हैं, भगवान के विषय में श्रवण करने को प्राप्त होता है। और जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं तो समझो उसी समय भगवान हृदय में आकर खेद हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्यते तकृति भी,
शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान की इन कथाओं को श्रवण करने का अवसर मिला है। आप सब साथ रहिएगा और कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य किया कीजिए ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।